अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे हैं खलीलुल्लाह के बारे में। खलीलुल्लाह की बात चल रही है ना। खलील किसको कहते हैं? क्लोजेस्ट फ्रेंड को, क्लोजेस्ट फ्रेंड, ठीक है। और क्लोजेस्ट फ्रेंड के बारे में क्या आया था, अल्लाह ताला ने ऐसे ही उनको क्लोज नहीं किया। और ये क्लोजेस्ट फ्रेंड खलील जो हैं ये खुद नहीं बन गए, यानी कोई ऐसा नहीं कि हम उनको सिर्फ कहते हैं या हमने एक उनका नाम रख दिया, एक उनका लकब पड़ गया, या उन्होंने खुद अपना रखा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ने उनको अपना खलील बनाया है। कितना बड़ा ऑनर है, ये आम सी बात नहीं है। और फिर हमें ये पता चलता है जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक तो पहली दफा हम ये पढ़ रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात जब से कुरान पाक शुरू हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कई आजमाइशों में डाला, बड़ी बड़ी आजमाइश, इबतला बलाओं को कहा गया, जो आजमाइशें दी। फिर उसके बाद फरमाया कि तुमको इमाम बना रहा हूं, लीडर बना रहा हूं, रोल मॉडल बना रहा हूं, तुम्हें चूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। निजाइलु कल इन्ना से इमामा ऐसे ही नहीं कह दिया। तो आजमाइशों में पूरा उतरना ये इंसान के दर्जे बुलंद करता है, ये इंसान को अल्लाह का महबूब बनाता है। इससे अल्लाह ताला इस वजह से बंदे को चुनता है। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि आजमाइशों के वक्त में हमें साबित कदमी रखनी है, आजमाइशों के वक्त में हमें पूरा उतरना है उनके ऊपर, जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं वैसे बन के दिखाना है, उनसे गुजर जाना है। कि वो इम्तिहान भी हमेशा नहीं रहते, इम्तिहान ओवर हो जाता है, ओवर हो जाता है, लेकिन इंसान बेसब्री करता है। तो यहां से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उनको कब चुना और क्यों चुना। और फिर हमने देखा कि उन्होंने देखे फौरन, जैसे एक हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती ना, काला व मिन ज़ुर्रियतिल्ला, मेरी औलाद उसको भी तो इमाम बना लेना। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि इब्राहिम अगर तुम्हारी औलाद है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम मेरा खलील हो तो तुम्हारी औलाद भी पार होगी, वो भी इमाम बनेगी। नहीं, अल्लाह ताला का कायदा है कि नहीं, जो जालिम होंगे फरमाया नहीं, जो सही रास्ते पे नहीं होंगे अल्लाह ने उनको नहीं चुना, चाहे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद ही क्यों ना हो, ठीक है। और यहां से पता चलता है, और आज भी हमें सबक में पता चलेगा कि दीन के मामले में ये नहीं चलेगा कि मेरा बाप कौन है तो बस उसकी वजह से मैं भी कुछ बन गया, ठीक है। क्योंकि ये रिलीजियस इमामत की बात है, कोई बादशाहत नहीं है कि बाप बादशाह तो बेटा भी बादशाह बन जाएगा, ठीक है। आगे फिर हम देखते हैं कि इन्होंने जब दुआ की, रिस्क की, तो अब चूंकि अल्लाह ताला ने पहले मना कर दिया था ना कि जालिमों के लिए ना मेरे से बात करो, उनको नहीं मैंने देना ये मकाम, तो फिर अब कह रहे हैं कि अल्लाह जो रिस्क भी है ना उनको ही देना जो तुझ पे ईमान रखते हो और आखरत पे ईमान रखते हो, आयत नंबर 126 में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं नहीं रिस्क तो मैं जालिमों को भी दूंगा, काफिरों को भी दूंगा, काफिर जालिम होता है ना। रिस्क के मामले में ये नहीं फरमाया कि नहीं रिस्क मैंने नहीं देना उनको, ठीक है। बहुत बड़ी बात यहां से पता चल गई हमें कि ये जब अल्लाह ताला फरमाते हैं इमामत की बात तो फरमाया जालिमों को नहीं मिलेगी, लेकिन रिस्क जालिमों को भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि रिस्क अल्लाह सबको देता है, चाहे वो मोमिन है, चाहे काफिर है, चाहे कोई भी है, दुनिया की नियमतें अल्लाह सबको नवाज रहा है। लेकिन जब दीन के लिए चुनने का मामला आता है ना तो फिर वो वाला रूल नहीं चलता यहाँ पे जो रिस्क का था। रिस्क के लिए अलग रूल है, फरमा बरदार है कोई या ना फरमान है, मोमिन है, काफिर है, किसी भी अकीदे का है, मुशरिक है, एथीस्ट है, कुछ भी है, अल्लाह सबको खिलाता है, पिलाता है, नेमते देता है। लेकिन जब आता है मामला चुनने का कि अपने दीन के लिए चुन ले अल्लाह किसी को, अपना महबूब बना ले, अपना प्यारा बना ले, तो वो उसी को बनाता है जो मुत्तकी होता है। तो इसका मतलब कभी हम ये ना सोचे कि मेरी जॉब अच्छी चल रही है, मेरी गाड़ी खूबसूरत है, मेरा घर बड़ा है, मुझे तरक्कियां मिल रही हैं, तो बस अल्लाह ने ये मुझे सारा कुछ दिया तो हुआ है, तो इसका मतलब अल्लाह मेरे से खुशी है तो दे रहा है ना, तो सब ठीक चल रहा है, सभी ठीक है। अल्लाह जब दुनिया में सब ठीक चल रहा है ये मेरा मामला, तो अल्लाह के यहाँ भी सब अच्छा चल रहा है, वहां पे भी मेरा खाता सही चल रहा है। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि अल्लाह खुश ही है तो मेरा यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। और जब हमारे पर कोई मुसीबत आती है, हम कहते हैं पता नहीं अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, अल्लाह हू अकबर, ऐसा ही है ना। तो हमें क्या पता कि जिस वक्त हमें नेमतें मिल रही हैं उस वक्त अल्लाह हमसे खुश है कि नहीं, क्या पता उस वक्त अल्लाह हमसे नाराज हो। फिरौन को तो बड़ी नेमतें मिली, अल्लाह क्या उससे खुश था। सरदारियां मिली कुरैश मक्का को, क्या उन काफिरों से अल्लाह खुश था। तो हमारे अक्सर दिल में ख्याल तब आता है जिस वक्त हमारे कोई मुसीबत आती है, और जब दिन अच्छे होते हैं तो सोचते हैं अल्लाह बस खुश ही है, इतने नेचुरली एक आती है बात, तो ये भी चीज को जहन से निकालते, को पता नहीं है, हो सकता है मुसीबत आई भी है तो तब अल्लाह राजी है आपसे, हो सकता है जब खुशियां है तो उस वक्त अल्लाह ताला राजी नहीं है आपसे। ये सब इंसान के अपने अमल पे डिपेंड करता है। नेम तो वो देख के कभी धोखा ना खाइएगा, ठीक है, अपने आप को बहलाते ना रहें कि मुझे सब कुछ अच्छा तो चल रहा है तो बस सब ठीक ही है, इसका मतलब मेरी नमाजें भी यकीनन ठीक होंगी, मेरा सब कुछ सही ही होगा जो सब ठीक चल रहा है, कोई मुसीबत नहीं आई, वरना जरूर कोई मुसीबत आ जाती, कोई तकलीफ। देखो ना दुनिया में लोगों पर कितनी मुसीबतें आई, मेरे पर तो कोई नहीं आई, इसका मतलब है कि बस ठीक चल रहा है, मैं सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, कोई मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ये जहन से निकाल दे, ठीक है। और फिर देखिए इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबा बना रहे हैं, अल्लाह अकबर, कितनी डेप्थ है इस दुआ के अंदर, रब्बाना तकब्बल मिन्ना, कितनी डेप्थ है ना। तो कितना बड़ा सबक है हमारे लिए भी, और हम इस बात को याद कर लें, रब्बाना तकब्बल मिन्ना, जब भी कोई अच्छा काम करें तो जरूर कहें रब्बाना तकब्बल मिन्ना, ठीक है। और अक्सर लोग आपको कहते हैं, जैसे मुझे कई दफा लोग कहते हैं अगर मैं कहूंगी कि अल्लाह मेरे से ये काम कबूल कर ले, बस कहते हैं क्यों नहीं कबूल होगा, आपका तो कबूल ही होना। नहीं, किसी को नहीं पता, हम कैसे कह सकते हैं, इतना बड़ा कारनामा कर रहे हैं इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, और हैं कौन, पैगंबर हैं दोनों, दोनों बाप बेटा नबी हैं, और काम क्या हो रहा है, आम कोई मस्जिद नहीं बना रहे, काबातुल्ला बना रहे हैं, और अपने हाथों से बना रहे हैं, उठा उठा के पत्थर ढो रहे हैं, मट्टी गारा उठा रहे हैं, रख रहे हैं, कोई छोटी बात है ये, जमीन पे जो सबसे मुकद्दस जगह है वो बना रहे हैं। हम तो एक मस्जिद में चंदा दे के ही समझते हैं ला जी हमने तो कितना बड़ा काम कर दिया, अब ला ये कबूल नहीं होगा, हमने मस्जिद बनवाई है, सिर्फ पैसे दे के डोनेशन दे के हम क्या समझते हैं, और वो अपने हाथों से तामीर कर रहे हैं, और इतनी बड़ी नेकी का काम करते हुए भी डर रहे हैं कि अल्लाह कबूल कर लेना। तो हम भी हमेशा चाहे कितना ही बड़ा काम क्यों ना आप कर रहे हैं, और आपको लगे ये तो कबूल होना ही होना है, ये शैतान अंदर डालता है ना, इसमें क्या ये कैसे नहीं कबूल होगा, क्या उनकी, अल्लाह माफ करे नाउजु बिल्ला, उनकी नियतों में क्या कभी कोई खोट हो सकता है, इतने बड़े पैगंबरों की फिर भी वो दुआएं कर रहे हैं, वो हमारे जैसों का तो हम कुछ गारंटी नहीं दे सकते हमारी नियतें क्या होती हैं जब हम कोई काम करते हैं। तो याद रखें, काम करना बड़ी बात नहीं है, उसका कबूल हो जाना बड़ी बात है, वरना नेकियां तो मुनाफिकीन भी करते थे, नेक काम तो काफिर भी कर लेते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी कई नेकियां कर रहे होते हैं, देखते नहीं कितने चैरिटी वर्क करते हैं, कितने लोगों के काम आ रहे होते हैं, तो वो भी कर लेते हैं। तो असल बात ये नहीं है कि हमने नेकी कर ली, असल बात ये अल्लाह कबूल कर ले, कभी अपनी किसी नेकी के काम से धोखा ना खाए, ठीक है। हमें नहीं पता कहाँ पे रियाकारी हो गई हो, कहाँ पे तकब्बुर आ गया हो, कहाँ पे क्या चीज हो गई, कुछ भी हो सकता है जिसे नेकी ज्यादा होती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है जिस वक्त की थी तब तो ठीक थी, उसके बाद में कुछ ऐसा हो गया कि अमल जाया हो गया, अमालनामे से ही मिट गया। तो कौन गारंटी दे सकता है? अल्लाह ताला ने कुराने पाक में फरमाया, मुत्तकी तो वो है कि जब कोई नेकी का काम करते हैं तो वजीलत कुलूबुहुम, उनके दिल कांपते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो नेकी करते हैं और कांपते हैं, क्या इसलिए कि वो उन्होंने से वो बड़े गुनाहगार थे इसलिए वो डर रहे हैं? जैसे हम भी सोचते ना कि पता नहीं कितने हैं गुनाहगार हैं, इसलिए पता नहीं बेचारे डर रहे हैं कि कांप रहे हैं कि अब पता नहीं हमारी नेकी कबूल होगी या नहीं। आपने फरमाया नहीं है सिद्दीक की बेटी, नहीं, ये वो हैं जो नेकी करते हैं और मुत्तकी हैं और फिर भी डरते हैं कि पता नहीं अल्लाह के यहाँ कबूल होती है कि नहीं। सुभान अल्लाह, जैसे इब्राहिम अलैहि सलाम। अल्लाह अकबर। तो छोटी सी भी नेकी कबूल हो गई ना तो वो भी बख्शिश करा सकती है, और बड़ी नेकी भी अगर कबूल ना हुई तो वो भी बेकार ही है, उसे कोई फायदा नहीं। तो नेकी की बड़ाई या कितनी ह्यूज है या कितनी छोटी है इससे नहीं, इसको नहीं देखा करें, ये देखें कि इखलास कितना है इसके अंदर, और इसकी परेशानी रखें, इसकी फिक्र रखें कि अल्लाह कबूल कर लेना, अपनी नेकियों से धोखा ना खाया करें। ठीक है, जब तक जाके वहां ना देख लें कि भाई थी भी कि नहीं थी। अब अपना खोलेंगे अमालनामा तभी पता चलेगा ना, तो उससे पहले हम में से कोई बेफिक्र नहीं हो सकता, चाहे वो कोई कितने ही बड़े काम कर रहा। तो अब हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं, कैसे उन्होंने सुभान अल्लाह अपनी औलाद के लिए भी दुआएं की। अल्लाह अमिन जुर्रियतिना उम्मत मुस्लिमत, अल्लाह कितनी औलाद की फिक्र, और आज भी यही बात होगी, खुद भी वो फरमा बरदार थे और औलाद की भी फिक्र करने वाले थे, खुद अपने लिए भी मांग रहे हैं वजालना मुस्लिम ही नहीं लग, ऐसे नहीं कि अपना हम तो खुद नेक ही हैं। अब कुछ लोग आगे कहते हैं अब हम बस औलाद के लिए कर रहे हैं, अपनी यानी कुछ अपनी नहीं है कुछ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, पहले अपने आप को बचाओ आग से। खुद माँ को फिक्र नहीं है कि मैं अल्लाह की फरमाबरदारी करूं, यानी जिनको खुद फिक्र है उनकी नहीं बात करूं, खुद जिनको फिक्र नहीं है ना, खुद कोई कुरान पाक पढ़ना, ना खुद नमाजों की पाबंदी करना, ना खुद कोई और अल्लाह ताला की अहकामात को समझना सुनना, और फिर लेकिन औलाद को चाहना कि ये बहुत नेक हो जाए, कैसे हो सकता है? हम औलाद के लिए अगर आप ये ख्वाहिश करें तो पहले अपना तो देखिए, अपने आप को भी फरमाबरदारी पे लेकर आए। आप अगर 100% करेंगे ना तो आपकी औलाद 50% करेगी, याद रखें। औलाद पीछे चलती वालदेन के लिए, उनसे एक एक स्टेप बैक होती है, और आप ही खुद 50% है तो औलाद किधर रहेगी? तो वो पहले कह रहे हैं वजालना मुस्लिम ही नहीं लग, अल्लाह हमें फरमा बरदार बना दे अपने लिए। तो पहले क्या फरमा बरदार नहीं थे? पहले क्या नहीं थे फरमा बरदार जो अपने लिए दुआ मांग रहे? नहीं, फरमा बरदारी में भी और आगे बढ़ा दे अल्लाह। हम तो कहते हैं ना तो मुसलमान हैं ही हम, और क्या करें? वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं बहनों कि वो कह रहे हैं अल्लाह हमें मुसलमान बना दे, फरमा बरदार बना दे, और हम कहते हैं लो और क्या हमने करना, कर तो रहे हैं। तो फरमा बरदारी में बढ़ा दे, नंबर टू क्या मतलब है? फरमा बरदारी में दवाम, कंटिन्यूटी, क्योंकि आज फरमा बरदार है कल को किसने देखा, कल को क्या पता है कि ट्रैक से हट जाए, पटड़ी से उतर जाए। तो अल्लाह फरमा बरदार रखना ये मतलब है, समझ आई? तो आज की आयत देखते हैं, आयत 132 से 141 तक। ववस्सा, और वसीयत की भी हासात इसके इब्राहिम अलैह सलाम ने अपने बेटों को और याकूब अलैह सलाम ने, किस चीज की वसीयत की? यानी वसीयत क्या होती है? ताकीद, और खास तौर पे मौत के वक्त जो की जाती है उसको वसीयत कहते हैं ना हम, क्योंकि बहुत ताकीदी हुक्म होता है ना, जैसे हम कहते हैं मेरी अम्मी की वसीयत थी ये, वो कह के ये मरी थी, तो उसको बहुत बड़ी एक चीज को समझा जाता है ना। तो उन्होंने वसीयत की इब्राहिम अलैह सलाम ने भी अपने बेटों को और याकूब अलैह सलाम ने भी, या बनी या ए मेरे बेटो इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन चूज कर लिया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन खुद चूज किया है, और वो दीन क्या है? कि कैसे पता चलेगा वो कौन सा दिन है। सभी कहते हैं, यहूदी कहते हैं हमारा दिन अल्लाह ने चूज किया, ईसाई कहेंगे ईसाई हो जाओ तो फिर तुम ठीक ट्रैक पे हो, फिर तुम सही हो, पहले पढ़ चुके हैं ना हम, आगे भी आज पढ़ेंगे। तो वो तो कहते हैं कि हमारा ही दीन है जो चोजन रिलीजन है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा दीन है जो अल्लाह ने चूज किया है, ये हम कैसे कह सकते हैं। याद रखिए कुराने पाक में एक जगह कोई बात आती है ना तो उसकी वजाहत कहीं और होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आले इमरान में, इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक बस अब दीन इस्लाम ही है। और वाजे कर दिया सूरह आले इमरान में, वह मई यब तगी गैर अल इस्लामी दीन फलन युकबल मिन हुवा हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जो इस्लाम के अलावा कोई दीन अल्लाह के सामने लेकर आया उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। यानी अब इस्लाम आ गया है ना, ये कुरान उतर आया है, अब इसके बाद कोई और दीन, अपने अपने वक्तों में वो ठीक थे, जो ईसा अलैहि सलाम के मानने वाले थे वो ठीक थे, जो मूसा अलैहि सलाम के मानने वाले थे वो ठीक थे, अपने अपने वक्तों में जिन्होंने उनकी इत्तेबा की। लेकिन अब जब इस्लाम एज अ रिलीजन आ गया, अब नहीं कोई कह सकता ये सारे दीन ठीक है। कुछ लोग माशाल्लाह इतने वो नाइस बनते हैं, इस तरह से कह के वो सोते हैं, ये तो हम बहुत सबके साथ हम कितने घुल मिल के चलने वाले हैं, देखो हम कितने टॉलरेंट हैं, ये बात टॉलरेंस की नहीं है। देखिए जब कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने अब तुम्हारे लिए चूज कर लिया दीन, यानी तमाम अदियान में से किसको पसंद कर लिया, इस्लाम को, अल्लाह के नजदीक इन दीना इंदल्लाह इस्लाम, और इस्लाम के अलावा कोई दीन नहीं है, तो इसमें ना तो कोई टॉलरेंस की बात है ना वो, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। बस बात ये है कि अब पिछले अदियान एक्सपायर हो चुके हैं, एक्सपायर्ड चीज को आप खाना पसंद नहीं करते, आप रखना पसंद नहीं करते, नहीं जी ये तो एक्सपायर हो गया, और फौरन गार्बेज में फेंकते, और दीन एक्सपायर्ड लेके बैठे हैं। वो अपने जमाने में रेलेवेंट थे, आज नहीं है। अब अल्लाह ताला ने इस्लाम को चुन लिया, और या अब इस वक्त क्या है, वो तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ये वसीयत कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, कौन से दीन का कह रहे हैं, वो दीन का कह रहे हैं जो दीन हक है, और वो हमेशा से इस्लाम रहा है। अब उन्होंने अपने दीन को, किसी ने यहूदियत नाम दे दिया, किसी ने ईसाइयत नाम दे दिया, लेकिन आपको पता है आदम अलैहि सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया का दीन इस्लाम ही था, यानी तौहीद। इस्लाम तौहीद का दर्स देता है ना, तौहीद सबका रिलीजन था, अब उसको इस्लाम कह सकते हैं आप, तो वो सब इस्लाम पर थे, एक ही उनकी दीन था, बेस एक थी। हाँ शरीयतें डिफरेंट डिफरेंट थी, यानी उनके मतलब किसी का रोजा सुबह से शाम तक है तो किसी का रोजा 24 आवर का है, तो किसी की नमाज किसी तरह से है, किसी की नमाज दूसरी तरह से है, इस तरह से हो सकते हैं, कुछ निकाह और तलाक के अहकामात में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन बेस तो सेम है ना। तो उन्होंने भी अपनी औलाद को देखें क्या वसीयत की, इससे यहां पता चलता है कि अपनी औलाद को बताते रहना चाहिए कि देखो अल्लाह ने तुम्हारे लिए ये तरीका पसंद किया है, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम ही है, इससे हट के कोई और दीन नहीं अपनाना कभी। वल फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मत तुम मरना इल्ला मगर इस हाल में, वाओ का तर्जुमा यहाँ पे और की जगह ना इस हाल में, अगर आप लिखे इस हाल में के तुम मुस्लिम हो, यानी क्या मतलब। अच्छा एक आपको बात बताऊं, फेले अमर आप समझते हैं ना अभी, कि यानी किसी चीज का हुक्म करना, और एक होता है फेले नहीं, फेले नहीं होता है कि यानी किसी चीज से रोकना, जैसे मैं आपको कहूं मत खड़े हो, मत बैठो, नहीं जाओ ना, ये क्या है फेले नहीं, यहां पे फेले नहीं आया, ला तमूतुन्ना ना तुम मरना, मरना तो इंसान के इख्तियार में नहीं होता कि किस वक्त उसने मरना है किस वक्त नहीं मरना, लेकिन आगे वो कंडीशन बताएगी कि असल बात क्या कही जा रही, मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो, यानी क्या मतलब हुआ। नंबर वन, दो माने इसके लिखे, नंबर वन इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान हो, ठीक है अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। नंबर टू, तुम्हें इस हाल में मौत आए कि तुम फरमा बरदार हो अल्लाह के। ठीक है, तो क्योंकि मुस्लिम का माना क्या है, फरमा बरदार, जिसने सबमिट कर दिया हो अल्लाह की विल के आगे, खुद को सबमिट कर दिया हो, खुद को झुका दिया हो, जैसे हम पढ़ते हैं ना, सरे तस्लीम खम कर दिया हो, क्या मतलब अपना सर झुका देना, अपने आप को सबमिट कर देना। ठीक है, कि मेरी कोई विल नहीं है, मेरी कोई मर्जी नहीं है, वो ही मर्जी है जो अल्लाह की मर्जी है, तो वो होता है मुस्लिम। मुस्लिम ऐसे नहीं नाम रख लेने से कोई मुस्लिम नहीं हो जाता, मैं मुसलमान हूं, मैंने कह दिया तो मुसलमानों का हकीकी मुसलमान कौन है? हकीकी मुसलमान तो वही है जो अल्लाह के आगे झुक जाए, सबमिट कर दे अपनी विल। तो क्या उन्होंने वसीयत की कि तुम मरना नहीं मगर इस हाल में कि तुम अल्लाह के फरमाबरदार हो। तो अब सवाल ये है कि हमारी तो मौत हमारे हाथ में थोड़ी है कि पता है वो हमें कि किस वक्त हमने मरना है तो हम उस वक्त मुस्लिम हो जाए। इससे क्या पता चलता है, यानी ऐसे अमल में रहो कि तुम्हें मौत आ जाए तो तब भी फरमा बरदारी की मौत हो, यानी अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की फरमा बरदारी करो। ऐसा कोई काम ना करना कि अगर उसमें मौत आ गई तो नाफरमानी की मौत हो, यानी मुस्लिम की मौत आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, इस बात को देखें, उन्होंने ताकीद के साथ वसीयत की, इस बात को उन्होंने इतनी ताकीद से अपने बच्चों से कहा, यानी इससे तो मतलब पता चलता है ना, फला तमूतुना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, से पता चलता है कि पूरी जिंदगी फिर फरमाबरदार है ना, क्योंकि मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है, वो तो इंसान के इख्तियार में नहीं है, जैसे हमने बात की, ना पता है कि कल आनी है, ना पता परसों आनी, ना पता आज शाम आ जानी, ना पता 10 साल बाद आनी, ना पता है घर में आनी, ना पता है सफर में आनी है, ना पता है कि बीमारी में आनी है या सेहत की हालत में आ जानी, कुछ भी नहीं पता। तो जो पता ही नहीं है तो फिर सारा वक्त फरमाबरदारी करेंगे तो फिर आएगी। मैंने एक वीडियो शेयर भी की है कि एक बड़े शेख हैं, वो कोई लेक्चर दे रहे हैं और बहुत लोग बैठे हुए हैं कमरे में, बहुत बड़े बड़े उलमा भी बैठे हैं, बड़े लोग भी बैठे हैं, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बता रहे हैं, उनकी प्यारी बातें बता रहे हैं, तो इतने ही में कहते हैं मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, और साथ ही उनका ना सर पीछे को हो गया और फौत हो गए। देखिए, अब वही बात है, जो इंसान जिन कामों में लगा रहता है ना, उन्हीं में उसकी मौत आती है। ठीक है, अगर आप अल्लाह की फरमाबरदारी में लगे रहेंगे तो मौत भी इंशाल्लाह उसी में आएगी। आप क्यों देखते हैं कोई लोग सजदे में थे उनको मौत आ गई? हमारी भी बड़ी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मौत आए तो मैं बस कुरान पढ़ रही हूँ, मौत आए तो मुझे इस हाल में, इंसान सोचता है ना कभी, तो कैसे होगा ये, इस सूरत में नहीं हो सकता कि जब कभी कभार इंसान कोई काम करे, वंस अ व्हाइल इंसान कुरान खोल रहा है, रमजानों में सिर्फ खोल रहा है, या नमाज की फिक्र नहीं है और ये सोच है कि सजदे में मौत आ जाए, ऐसे नहीं होता। तो अगर ख्वाहिश है कि मेरी मौत इस हाल में आए, हर एक की अपनी होती है, उम्मीद है कि आप लोग भी इसका सोचते होंगे कि किस तरह से मैं चाहती हूँ कि मेरी मौत आए, और होनी चाहिए ये ख्वाहिश, अल्लाह ऐसे ऐसे मेरा दिल करता है कि ऐसे मौत आए, तो फिर वही काम में अपने आप को लगाएं। और जो लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पे वो नहीं चाहते कि उनकी मौत आए, वो डरते नहीं है कि अगर यहां मौत का तो कोई पता नहीं, अगर यहां पे मौत का फरिश्ता आ गया तो क्या हो। तो कभी अपने आप को ऐसी जगहों को अवॉइड करें, ऐसी मजलिसों को अवॉइड करें जहां आप नहीं चाहते कि आप मुझे मौत आए, मसलन शराब की कोई मजलिस है, लोग वहां बैठे के शराब पी रहे हैं, क्या आप चाहेंगे यहाँ पे मौत आए? मुझे कोई सिनेमा घर है, क्या चाहेंगे वहां पे मौत आए? हम इस पे नहीं बहस कर रहे कि ये जायज है नहीं जायज, या क्या है क्या नहीं है, मैं कोई मूवीज के खिलाफ नहीं कोई फतवा दे रही, बस जी सिर्फ आपको, हर एक बंदे को अंदर से उसके एक चीज होती है जो आपको बताती है, तो बताएं क्या चाहते हैं वहां पे मौत है, या ऐसे जो नाच गाने हो रहे हैं जहां पे लाउड म्यूजिक हो रहा है, लड़कियां नाच रही हैं वहां पे, अब मुझे मौत आ जाए तो क्या चाहते हैं ऐसे? तो फिर क्यों नहीं हमेशा इस चीज की तैयारी के साथ रहते हैं कि मौत तो कहीं पे भी आ सकती, मैं नहीं चाहूंगी मेरी मौत यहाँ है, ऐसी जगहों पे ना जाए, ऐसी मजलिसों में ना बैठे, क्योंकि जैसी इंसान की जिंदगी होगी हदीस में आता है वैसी उसकी मौत होगी, और जैसी उसकी मौत होगी वैसे ही वो उठाया जाएगा। कयामत के दिन देखिए ना, अब वो जो एहराम पहने हुए है, तलबिया पुकार रहा है, अब उसको मौत आ जाती है, तो अब वो पता कयामत के दिन कैसे उठेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ उठेगा, सुभान अल्लाह, इतनी खुशकिस्मती है। तो जो कुछ और करते हुए दुनिया से गए हैं, या किसी और जगहों पे थे, ऐसी जगहों पे जहां पे नहीं उनको होना चाहिए था, वहां पे उनको मौत आ गई, तो उठेंगे कैसे फिर, वही काम करते हुए उठेंगे फिर। तो ये भी इंसान फिर सोच ले कि वो उस कैसा चाहता है अपने लिए, क्या अंजाम चाहता है, और कैसे अल्लाह के सामने हशर में उठना चाहता है। हम सोचे तो क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए तो जा रहे, आपको नहीं पता वो थोड़ी देर में क्या हो जाए। क्या आप रोज सुनते नहीं है कैसे लोगों की अचानक मौत होती है, कोई नहीं कुछ कह सकता, चाहे वो बूढ़ा है या जवान है, वो नहीं बता सकता कि मैंने जाने का दिन है, या अब जाने का वक्त है, या कौन सा है। तो अपने आप को हमेशा अल्लाह की फरमाबरदारी में रखें। अगर आप ख्वाहिश करते हैं कि आप फरमाबरदारी में ही मरें और फरमाबरदारी के साथ ही उठें, तो जरूर अपने एक्शंस को देखा करें, और जब कुछ गलत करने लगे तो तब सोचें, आई अल्लाह अगर इसमें मौत आ गई तो क्या होगा, जरूर सोचें। ठीक है, तो उन्होंने कितनी प्यारी वसीयत की कि हमारे बच्चों, देखिए तरीका भी है ना कहने का, उन्होंने ये नहीं कहा कि सारी जिंदगी बस तुमने अल्लाह की फरमाबरदारी करनी, नहीं, तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। अम कुंतुम शुहदा, क्या थे तुम हाजिर उस वक्त, यानी क्या तुम्हें, या और क्या, दोनों अम का तर्जुमा, तुम हाजिर थे, इद हदौरा याकूब अल मौत, जब आ रही थी याकूब अलैहिस्सलाम को मौत। ये क्यों, किसको कहा गया, असल में यहूदी कहते थे कि याकूब अलैहिस्सलाम ने हमें यहूदियत की तालीम दी है, और वो हमें कह के गए थे कि यहूदी रहना, तो और वो भी हमारे ही दीन पे थे। तो उनसे कहा गया, तुम्हें पता है, तुम उस वक्त प्रेजेंट थे, तुम उस वक्त मौजूद थे जब उनको मौत आ रही थी, और अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो क्या अपनी मौत के वक्त कह रहे थे। इज कॉल अली बनी ही, जब कहा उसने अपने बेटों से, क्या कहा। देखिए अब सोचें, कोई डेथ बेड पे है, इमेजिन करें उसके जाने का वक्त है, उस वक्त कितना केओटिक माहौल होता है ना, सब एकदम हड़बड़ा जाते हैं, और मतलब किसी को कोई होश नहीं होता उस वक्त, वो अपने बेटों को क्या कह रहे हैं। और आपने कभी किसी को डेथ बेड पे देखा हो, और वो अपनी औलाद को बुलाए, तो आप भी कभी सोचिएगा, कहीं आपने किसी को देखा तो सोचिएगा कि आजकल क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं आप बताएं कुछ, अक्सर लोग क्या कह रहे होते हैं, जिन्हें हमारा ये बिजनेस है बेटा, बिजनेस तुमने देखना है, जायदादें हैं उसके ऊपर झगड़ना नहीं, बेटों को चलो बहुत माँ बाप को ख्याल होता है तो वो कह देते हैं कि बहनों का ख्याल रखना, फलाने का इस जगह रिश्ता कर देना, फला ऐसे हो जाना, इस तरह की बातें करते हैं, नहीं? बहुत मालदार होते हैं तो माल की ज्यादातर बातें करके जा रहे हैं, वसीयतें कर रहे होते हैं, फलाने को इतना दे देना, फलाने के साथ ऐसे करना, है ना। लेकिन यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, वो अपने बेटों को क्या कह रहे हैं, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बेटों मुझे बताओ तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। सुभान अल्लाह, कि ऑन इज हेड क्या चीज है, कि क्या चीज है जो उनकी फिक्र बनी हुई है, मेरे बाद मैं, यानी मिम बादी जानते हैं क्या है, बादी भी हो सकता था, मा ताबुदूना बादी, क्या बादी से नहीं काम चलता, हाँ वो भी तर्जुमा यही होना था, तुम इबादत करोगे बाद मेरे, मिम का क्यों लफ्ज आया, मिम बादी का मतलब है बहुत बाद मेरे, मेरे बहुत बाद, इसलिए कि जब एक इंसान मरता है तो आपने देखा होगा बहुत जो अल्लाह से दूर भी लोग होते हैं ना, जो कभी नमाजों की तरफ ध्यान नहीं है, कभी अल्लाह के अहकामात को नहीं समझते, वो भी कुरान खोल के बैठ जाते हैं, वो भी सर ढक के तो बस अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, फिर कुछ दिन जब कोई फौत होता है तो आपने देखा उनके घर का माहौल बिल्कुल ही अक्सर बदल जाता है ना। अल्लाह तौबा बस चल रही होती है, तस्बीहां चल रही होती हैं, ये असल बात कब होती है? जब कुछ अरसा गुजर जाता है फिर पता चलता है कि आप कितना दीन पे चल रहे हैं। तो फौरन बाद की बात नहीं है, मेरे बहुत बाद तक तुम किसकी इबादत करोगे? ही जस्ट वॉन्ट्स अश्योरिटी, अपने बच्चों से पूछ रहे हैं बताओ मुझे, ये फिक्र है उनकी। और याद रखें एक बात कि जो चीज इंसान की सारी जिंदगी फिक्र बनी रही, मौत के वक्त भी तो वही फिक्र होगी। अगर सारी जिंदगी जायदादों की और पैसों की और मेरा बैंक बैलेंस और मेरे जेवर तुमने लेने हैं और फलाने को किस किसको दूंगी और किसको, और उनके ख्याल रहे और अपने कपड़ों के, तो मरते वक्त भी इंसान यही कहेगा, ओ भाई उस पैसे का ख्याल रखना, देखो बिजनेस का ख्याल रखना, देखो वो मेरे जेवर फलां जगह पे पड़े हुए हैं और फलां भी को भी मैंने दिए हुए हैं, और वो ले लेना उससे और फलानी को दे देना, यही होंगी ना फिक्रें। लेकिन जिसकी फिक्र दीन होगी वो ही अपने बच्चों को कहेगा मरते वक्त, मेरे बच्चों किसकी इबादत करोगे? दिस शोज कि पूरी जिंदगी उनकी कैसी थी, ये सिर्फ मौत के बाद की बात नहीं। मौत के बाद किसको होश इतना होगा कि वो दीन की बात पूछे अगर उसको पूरी जिंदगी नहीं ये ख्याल रहा था। तो ये बात हमें बताती है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी क्या किया होगा, जब भी मरते वक्त भी पूछ रहे हैं और इस तरह का ट्रेन किया हुआ है कि वो ये सवाल करें मेरे बाद किसकी इबादत करोगे तुम। हम तो होश में भी नहीं कभी अपने बच्चों को पूछते, पूछते हैं क्या बेटा मैं मर जाऊंगी तो किसकी इबादत करोगे, पूछिएगा जरा। और क्या ये कभी कहते हैं फला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, मरना मरने की तो बात नहीं करते हम भाई अपने बच्चों से, हमारे बच्चों ने कभी नहीं मरना, वो नहीं ऐसी बातें ना करो, मनहूस है ये, हम तो ऐसी बात ही नहीं कर सकते कभी, ये तो हमेशा जिंदा रहने के लिए आए। चले वो ना सही, आप वैसे अगर कहेंगे अल्लाह के तला के फरमाबरदार रहना, मुस्लिम रहना, मेरे मरने के बाद भी ऐसे रहना, ये अल्लाह के दीन पे चलते रहो। देखिए लोग पूछते हैं कब तक बच्चों को नसीहतें करें, कब तक करें, यहां से देख लें कब तक करें, मरते दम तक करनी है। हाँ ये अलग बात है कि आज जब आपके बच्चे छोटे हैं उस वक्त उनको नसीहत करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, जब बिल्कुल शादीशुदा हो जाते हैं तो और तरह का डिफरेंट हो जाता है, मगर टॉक टू डेम अबाउट दिस, ये नहीं कि इन बातों को करने से ही शर्माते रहे। हम तो करने से ही शर्माते हैं या ये सोचते हैं इनसे क्या बात करनी, बस सारा कुछ पता तो है इनको, अब मैंने क्या कहना है, ये तो सुनते ही नहीं, ये कह के तो हम बात ही नहीं करते कभी। तो ये पैगंबरों ने तो नहीं ये सोचा, उन्होंने ये सोचा कि सारी जिंदगी तो इनको कहते रहे अब कहने की क्या जरूरत है, अब मरने का टाइम आ गया। नहीं, उस वक्त भी वो उनको क्या कह रहे हैं, मीन्स टिल योर लास्ट ब्रेथ आपका ये काम है, और यही सबसे बड़ी खैर ख्वाही अपनी औलाद के साथ। आप उनकी जितनी दुनिया की फिक्र करते उससे ज्यादा उनकी हमेशा की जिंदगी की फिक्र करें, और कहते रहें कहते रहें, कहने से क्यों थक जाते हैं हम, कुछ पैसा लगता है कहने में, नहीं वो सुनते नहीं, आपको क्या पता सुनते हैं या नहीं सुनते, वो आज नहीं भी सुनेंगे तो मैंने खुद कई लोगों को ये कहते सुना है, उनकी माँ बाप अरसा दराज पहले फौत हो गए तो अब कहते हैं जाके अल्लाह बख्शे मेरे वालिद ये कहा करते थे, उस वक्त नहीं उन्होंने उनकी बात सुनी, वो अब जाके सुन अब उनको याद आती है, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी वालदा ऐसे कहा करती थी। तो ये क्या है, इसका मतलब उनको वो बातें याद आती हैं, वो कहीं ना कहीं जहन में होती हैं, और उनको आप दुनिया से चले भी जाएं उनको हो सकता है 10 20 30 साल बाद कहीं आपकी बात याद आए, क्योंकि वो जहन में बैठी भी है, और अगर आपने कभी कही ही नहीं तो कभी नहीं उनको नमाज का, कभी नहीं उनको अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ बुलाया, सुनते नहीं भाई, ये कोई बात है सुनते नहीं, चलो नहीं सुनते आज ना सुने, हो सकता है कल सुने, हो सकता है परसों सुने, तो क्यों मायूस हो जाते हैं हम? तो कहते रहे क्या है, ये अंबिया का तरीका है, और ये बहुत जरूरी है हमें इनको बताना कि फला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, यानी मरते दम तक तुम इस्लाम पे रहना, ये बात है, ये फला तमूतुन्ना फरमा बरदारी की भी बात है और मुस्लिम रहने की बात है। क्योंकि आज जो वो दौर चल रहा है जिसको कहते हैं दौरे दज्जाल, यानी दज्जाल के आने के लिए स्टेज सेट हो रहा है, और आप अगर दुनिया के हालात से वाकिफ हैं कुछ ना कुछ, तो आप खुद देख रहे होंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। दौरे दज्जाल है ये, यानी दज्जाल आया नहीं है लेकिन उसकी तैयारी सारी हो रही है, सिर्फ दज्जाल के आने का इंतजार है। आप अगर मुस्लिम हैं तो परेशानी है आपके लिए, अगर आप मुस्लिम के अलावा कुछ भी और हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह कभी ना करे, मगर कुछ भी और हैं तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा ही है ना, आप दुनिया में देख लें कि रहना मुसलमान का मुश्किल हो रहा है, कहीं सफर करना मुसलमान के लिए मुश्किल है, कहीं जॉब्स अगर हकीकी मुसलमान है तो उसके लिए मुश्किल है, ये सब मुसलमानों के लिए मसले हैं ना, औरों के लिए तो नहीं। तो मुसलमान होना ही एक मुश्किल चीज बनता जा रहा है, और ये हमारा दौर है जो हम देख रहे हैं, आगे हमारी औलादों का दौर कैसा होगा? आसानी आ रही है? नहीं, दौरे दज्जाल है ही क्या, और दज्जाल का फितना है ही क्या, वो आपसे पैसे नहीं छीनेगा, वो आपसे आपकी कुछ जायदाद नहीं छीनने आ रहा, आपसे आपका ईमान छीनता है, और अगर ईमान नहीं दोगे तो वो कहता सब कुछ छिन जाएगा, फिर वो लेगा और चीजें, फिर सब जॉबें भी जाएंगी, घर बार भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, कहता ईमान दे दो, उसका तो है ही फितना ईमान का। तो सबसे ज्यादा खतरा क्या है? ईमान को खतरा है, और किस चीज को नहीं है। और आप दुनिया में ये देखना शुरू हो गए हैं कि अगर तुम मुसलमान हो तो यहां नहीं रह सकते, अगर तुम मुसलमान हो तो ये है तुम्हारे लिए। मुसलमान होना ये एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, और ये फेस करेंगी हमारी अगली जनरेशंस। तो क्या हमारा काम नहीं है कि हम ये कह के जाएं कि बेटा जान जाए तो जाए, ईमान ना जाए, देखना ईमान ना छोड़ना। आज वो अगर आपकी बात सुन के ऐसे करके सर झटक के चले भी जाते हैं तो कहीं तो बैठेगी वो बात, ईमान नहीं छोड़ना। मुझसे मिलोगे हशर में तो मुसलमान मिलना, मैं तुम्हें ना देखूंगा, तुम दूसरे ग्रोह में बैठे, ये कह के जाना हमारे लिए जरूरी है। और फिर दुआएं हैं, देखें दुआ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी जुर्रियत के लिए दुआ की है, दुआएं उसके बाद दुआओं की कोशिश और दुआएं साथ। अब देख लें ये किसको नसीहत कर रहे हैं, याकूब अलैहिस्सलाम, कुछ याद है आपको इनके बेटे कौन है? इस जिसने सूरह यूसुफ पढ़ी है वो याद कर ले कि ये कौन से बेटे हैं। इनमें यूसुफ अलैहिस्सलाम भी हैं, बिन्यामीन भी हैं, और वो दूसरे भी हैं भाई, ठीक है ना। अब उन दूसरे भाइयों से कितनी बड़ी गलती हुई भी है, कितनी बड़ी गलती हुई भी ना, ये वही भाई हैं, ये वही बेटे हैं जिनसे याकूब अलैहिस्सलाम ये बात कर रहे हैं ना, ये वही हैं जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था। इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता हाँ हम तो नेक है, हमारे तो बच्चे भी नेक ही होंगे और क्या होंगे, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनसे कितना बड़ा गुनाह हो गया था। लेकिन उसके बाद बाप की दुआ थी कि फिर वो पलट आए, है ना, पलट आए थे ना, अल्लाह ने पलटा दिया उनको। बाप की एक औलाद के साथ जो उनकी खैर ख्वाही थी दीन के मामले में, आपने देखा कि फिर वो रंग लाई है। तो पैगंबरों का तरीका यही है, गलती हुई थी बच्चों से मगर बाप ने भी माफ कर दिया और उनके लिए इस्तग़फ़ार भी की। तो ये वो बच्चे हैं, और किसी को गारंटी नहीं है कि वालदैन नेक हैं तो जरूर औलाद भी नेक ही साबित हो जाएगी, उनके लिए भी मेहनत करने की जरूरत है। और ये भी किसी को नहीं कहने की जरूरत है, लो छोड़ो तुम ये ऐसी फिक्रें करती रहती हो, कोई बात नहीं सही रहेंगे, नहीं, ये फिक्रें तो पैगंबरों ने की हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं ये फिक्रें।